ओम शांति। यथार्थ याद, यथार्थ याद क्या है? अगर हमारी याद की विधि एक्यूरेट है तभी हमारे विक्रम विनाश हो सकते हैं। अगर हमारी विधि एक्यूरेट नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते हैं। तो यथार्थ याद जो बाबा ने बताई मुरली में, जो बाबा सत्य है और बाबा की मुरली सत्य है। आज की मुरली में भी आपने सुना, किसी भी मनुष्य से मत सुनो, जो मनुष्य जो सुनाते हैं वो सत्य नहीं होता है, सिर्फ परमात्मा जो सुनाता है वो सत्य है। तो बाबा क्या सुनाता है? ये मुरली, मुरली ही सत्य है। अगर हम मेडिटेशन की परिभाषा देखें या योग की परिभाषा देखें, योग क्या है? योग जो है वो, या मेडिटेशन क्या है, अगर मैं इंग्लिश में शब्द यूज करूं तो मेडिटेशन इज बीइंग द ट्रूथ। सत्य बनना ही मेडिटेशन है। लिविंग द ट्रूथ, सत्य रहना ही मेडिटेशन है। और रियलाइजिंग द ट्रूथ, सत्य को अनुभव करते रहना सारा दिन, हर कर्म करते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, घर में काम करते, ऑफिस में काम करते, दुकान में काम करते, हर समय सत्य को अनुभव करते रहो। सत्य के सत्य माना मैं कौन हूं, मेरा कौन है। ये जो बाबा ने ज्ञान दिया है इसको जीना है, इसमें ही रहना है, और इसका ही हमें क्या बनना है, इसका स्वरूप बनना है। वो है मेडिटेशन, वो है याद। और दूसरे रूप में कहें तो याद माना क्या? याद माना जो बाबा ने कहा वो हर कर्म करते याद रहे। जो बाबा ने श्रीमत दी, डायरेक्शन दी, मुरली सुनाई, अगर वो हर कर्म करते याद रहे, डायरेक्शन याद रहे, तो यही बाबा की याद है। और याद का मतलब क्या? बाप से एक एक संबंध की अनुभूति करते रहना, एक एक संबंध की अनुभूति। बाबा से मुख्य हमारे 9 संबंध है। एक तो मां का संबंध, दूसरा बाप का संबंध, तीसरा टीचर का संबंध, चौथा सतगुरु का संबंध, पांचवा बंधु, बंधु माना बड़ा भाई, सखा दोस्त का संबंध, फिर साजन का संबंध, मतलब हमारा सबसे प्यारा कौन है? शिव बाबा, साजन, और फिर सर्जन, डॉक्टर। सबको डॉक्टर भी चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि आज सभी के आखिरी जन्म है। 63 जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं, तो आज वो पाप कर्म आखिरी जन्म होने के नाते सभी ब्राह्मणों को स्पेशली, है ना, दुनिया में भी ये हाल है किंतु ब्राह्मणों को ज्यादा, सभी बीमारियां, चाहे मन की चाहे तन की, उसका कारण क्या है? हमारे किए हुए पाप कर्म। 63 जन्म में जो हमने पाप किए हैं वही कारण है हमारे सभी बीमारी कारण। नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो गया है, फोबिया हो गया है, चिंता रहती है, बहुत डर लगता है, या कोई भी शरीर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, एसिडिटी है, दमा है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, कोई भी बीमारी आपको है, सबका कारण क्या है? हमारे किए हुए पाप कर्म। तो ये जो है सर्जन, है ना, तो हमें सर्जन की याद, जब भी कोई तकलीफ होवे कौन याद आना चाहिए? कौन याद आना चाहिए? डॉक्टर, डॉक्टर याद आना चाहिए, बाबा याद आना चाहिए, है ना। और फिर बच्चा, नौवां संबंध है बच्चा, तो बाप पर सब कुछ बलिहार जाना, है ना। तो याद किसकी आती है? एक तो जिसकी, जिससे हमारा बहुत स्नेह होता है, जिससे बहुत प्यार होता है उसकी याद आती है, जिससे हमारा संबंध होता है उसकी याद आती है, और जिससे हमें प्राप्ति होती है उसकी याद आती है। ये 3 जगह हमारी याद रहती है ना। अभी इसको हम थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं कि जब हम कह रहे हैं याद, तो याद क्या है? और हम याद की एक छोटी सी बिल्डिंग बना के देखेंगे, वो बिल्डिंग कैसी, उस बिल्डिंग में अगर हम रहे तो हमारा जीवन कैसा बीत सकता है ना। तो याद जो है बेसिकली, बाबा ने जो बताया है अभी 2 दिन पहले मुरली में भी आपने सुना होगा, याद माना रियलाइजेशन। बाबा कहते हैं जो बाबा सुनाते हैं, बाबा की श्रीमत है, डायरेक्शन है, उसको रिवाइज करना और रियलाइजेशन करना ही याद है। ज्ञान के डिफरेंट बिंदुओं का अनुभव करते रहना ही याद है। ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण करते रहना ही याद है। ज्ञान का हमें ना इमेजिन करना है। इमेजिन किसको किसको करते हैं हम? जो कल्पना होती, इमेजिनेशन का कल्पना, जो चीज नहीं है उसको हम इमेजिन करते हैं। और विजुअलाइजेशन भी, जो चीज जिनको देख सकते हैं वो विजुअलाइज करते हैं। ना हम आत्मा को देख सकते हैं, ना परमात्मा को देख सकते, ना सूक्ष्म वतन को देख सकते, ना परमधाम को देख सकते। और सूक्ष्म वतन कैसा है, परमधाम कैसा है, बाबा कैसा है, आत्मा कैसी है, वो हमें रियलाइज करनी है। वो रियलिटी में सत्य क्या है। आत्मा जो सूक्ष्म एक एनर्जी है, तत्वों का, पांच तत्वों का बना शरीर है, और आत्मा उसमें एक सूक्ष्म एनर्जी है। उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं। जैसे इस बिजली में तार है, ये तार है, इसमें बिजली जा रही है, इसमें बिजली जा रही ना, दिखाई दे रही है क्या आपको? दिखाई नहीं दे रही। अगर इसमें से रबड़ हटा दे तो दिखाई देगी क्या? तांबे का तार निकलेगा, तांबे के तार में बिजली दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। और अगर मान लीजिए बिजली दिखाई दे भी जाए, करंट के रूप में जाती, तो फायदा क्या है? क्या प्रूफ है कि इसमें करंट है? क्या प्रूफ है? ये माइक काम कर रहा है, ठीक है, इसमें प्रूफ हो गया ना। तो हमें अगर, तो हमें इस आत्मा को, बाबा ने कहा आत्मा को हम देख नहीं सकते, परमात्मा को हम देख नहीं सकते। हाँ, ज्ञान के तंत्र से उसको हम देख सकते हैं, मैं देख सकते हैं ना, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, राइट। कई भाई मैंने इसी में लगे रहते हैं कि मैं एक चमकता ऐसे बिंदु चमक रहा हूं, वहां पे ऊपर एक बिंदु है, ऊपर से किरणें आ रही हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं। वो चार घंटा पांच घंटा भी ऐसे बैठ के करते हो तो आपको विक्रम विनाश नहीं होंगे। जैसे बल्ब, बिजली का बल्ब है ना, ये बिजली के बल्ब से रोशनी आ रही है, तो इससे बिजली के बल्ब से रोशनी तो आती है, किंतु उसे मच्छर मक्खी नहीं मरते हैं, कीटाणु नहीं मरते हैं। ऐसे ही अगर हम विजुलाइज करते रहते हैं चीजों को, आत्मा को, परमात्मा को, सूक्ष्म वतन को, परम धाम को, सुख धाम को, तो रोशनी तो आती है, खुशी तो होती है। हम सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, अभी बाबा की गोद में बैठे हैं, अभी परम धाम पहुंच गए, है ना, करंट तो वो तो आती, लाइट तो आ गई, खुशी तो मिल गई, किंतु विक्रम विनाश नहीं होंगे। आप देखेंगे, आप 20 साल से कर रहे हैं, रोज विजुलाइज कर रहे हैं, सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, परम धाम में जाते हैं, किंतु गुस्सा खत्म नहीं हुआ, जल्दीबाजी खत्म नहीं हुई, चिंता खत्म नहीं हुई। आज भी डर लगता है, वैसे ही डर लग रहा है, आज भी बात बात में उदास हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी विधि मतलब गलत है। हमारे विक्रम विनाश, सूरज की लाइट से क्या होता है? सूरज की लाइट से क्या होता है? मच्छर, मक्खी, कीड़े सब मर जाते हैं, किचड़ा भस्म हो जाता है, नहीं होता। ये बल्ब की लाइट से होता है क्या? बल्ब की लाइट से नहीं होता है, सूरज की लाइट से होता है। तो अगर हम रियलाइज करें, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय ये रियलाइज करें कि मैं स्थूल देह नहीं, ये मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य में जागती ज्योत, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा ऊर्जा है, कोई देखने की चीज नहीं है, उसे देखने की कोशिश ना करें। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत जोर से आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं, यहां पे देखने की कोशिश करते हैं, और सिर दर्द हो जाता है, लगा रहे हैं योग, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिर दर्द। तो सिर दर्द होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, ठीक होना चाहिए ना। तो चलते फिरते अभ्यास चाहिए। मैंने बताया ना, लिविंग द ट्रूथ है, बीइंग द ट्रूथ, सत्य बनना ही मेडिटेशन है। आधा घंटा सुबह शाम नहीं, आधा घंटा हम सुबह शाम बैठ के करें, अमृत वेला बैठ के करें, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। शाम को भी आधा घंटा एक घंटा बैठ के करें, क्योंकि हमें अभ्यास करने के वास्ते, बाकी सारा दिन हमें ये रहे कि मैं कौन हूं, मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और दोनों भृक्टों के मध्य, ये भृक्टियां हैं दोनों, इनके मध्य, और दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इसका कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, उसको हम इसके बीच में आत्मा स्थित है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे। और मैं आत्मा, मैं अति मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा से 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, ज्ञान, पहला है ज्ञान। ज्ञान माना क्या? सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। सत्य क्या है? मैं कौन हूं? मैं देह नहीं। बार बार हमारे अंदर क्या रिकॉर्ड है, 63 जन्म से क्या रिकॉर्ड है मेरे अंदर, कि मैं देह हूं, मैं ये हूं। शीशे में देखता हूं, दूसरे को देखता हूं, ये भी देह है। ये अंदर 2500 साल से ही रिकॉर्ड है। अब बार बार अपने आप क्या मैसेज देना कि मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं 5 तत्वों का पुतला नहीं हूं, मैं तो ऊर्जा हूं, आध्यात्मिक ऊर्जा हूं, स्पिरिचुअल ऊर्जा हूं, आत्मिक ऊर्जा हूं। बार 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 बार, और जो मैं ऊर्जा हूं उस, ये सत्य है, ये सत्य का, सत्य की समझ है। और मेरा जो है वो परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य, हम चैतन्य है, हमारी ज्योत कभी कम ज्यादा होती है, किंतु उसकी ज्योत परम माना सदा जागती ज्योत, उसकी ज्योत कभी कम ज्यादा नहीं होती, मतलब उसकी लाइट ना कम होती ना ज्यादा होती, जैसी है वैसी रहती सदा, पूरे 5000 साल क्या, पूरे कलप कलप एक जैसी रहती है। परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, मतलब उसकी ज्योत परम सबसे सुप्रीम है, और फिर परम पिता सारी आत्माओं का पिता, परम आत्मा सब आत्माओं में सुप्रीम शिव बाबा है। और जो मेरा बाप है शिव बाबा, वो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है, पावर हाउस है। शिव बाबा सदा सत्य है, सत्य माना, सत्य माना क्या, सत्य माना जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, हम सत्य नहीं, सदा सत्य नहीं है। जब देह विमान में आ गई तो सत्य हो गई, श्याम हो गई, किंतु बाबा सदा सत्य है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, सदा पावन है शिव बाबा, सदा शांत, सदा पावन माना सदा ही हम सब आत्माओं को, हमको सिर्फ आत्मा के रूप में देखता है, किसी के देह के रूप में नहीं देखता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना, सबको उसकी ओरिजिनल स्वरूप से देखता है। पवित्रता की परिभाषा क्या है? अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, ये पवित्रता की परिभाषा है। फिर शिव बाबा सदा सदा, सदा शांत है। शांत माना शिव बाबा को कभी भी ना पास्ट का चिंतन होता है ना भविष्य की चिंता है, सदा वर्तमान में स्थित रहता है, और ड्रामा में जो होना होता है उसको वो टच होता है। बाबा कोई संकल्प नहीं चलाता है, हम संकल्प करते हैं, बाबा कभी संकल्प नहीं करता है। वो सदा सदा शांत है, सदा रूहानी प्यार है, अगर कहें तो सदा रूहानी प्रेम है। वो क्यों है प्रेम? उसको हर आत्मा से प्यार है, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, सबसे बराबर प्यार है। वो सबको जो जैसा भी कर रहा है सबको आदर से स्वीकार करता है, हर एक को उसके पार्ट के साथ स्वीकार कर रहा है। कोई आतंकवादी भी हो तो बाबा क्या कहता है उसको, इसका हवा पानी बंद, ऐसे करता है क्या बाबा? वो भी जाता है तो इसको अपना वो करना होता है, पाप करना होता है, उस दिन जाता है अल्लाह के पास, जाएगा बोलेगा मेरा आज मिशन सक्सेसफुल हो, उसको भी लगता है मेरा भगवान ने अल्लाह ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, जाओ मैं तुम्हारे साथ, नहीं लगता है? सबको स्वीकार करता है, इसलिए हर आत्मा उसके पास जाती है, कैसे भी किसी भी कारण से जाए, सबसे प्यार है। इंसान जजमेंटल है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, परमात्मा सदा सबको प्यार करता है। ऐसा ही हमको बनना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, उसे कहते प्यार। परमात्मा सदा अतीन्द्रिय सुख है, मतलब वो सदा ही सब बातों से ऊपर है। अतीन्द्रिय सुख माना जिसकी कोई इच्छा ना हो, संतुष्ट हो, जिसको कोई इच्छा ना हो, वो है अतीन्द्रिय सुख, आनंद। परमात्मा सदा आनंद है, सब आनंद माना आनंद माना बंधन, सब बंधनों से पार है। ना उससे देह का बंधन है, देह की दुनिया का बंधन है, कोई कर्म का बंधन है ही नहीं उसके पास, और सर्वशक्तिमान है, और हीलिंग एनर्जी सबको ठीक करने वाला है, और 7 एनर्जी का बैलेंस है उसके पास। इंसान के पास 7 एनर्जी का बैलेंस नहीं होता, किसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, पवित्रता नहीं है, किसके पास थोड़ी पवित्रता है, शांति नहीं है, किसके पास शांति है तो रूहानी प्रेम नहीं है, कि रूहानी प्रेम है तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है तो आनंद नहीं है, अच्छा ये भी थोड़ा थोड़ा है तो शक्तियां नहीं है, सातो एनर्जी का बैलेंस नहीं है। शिव बाबा के सातो एनर्जी का बैलेंस है और वो सब हीलिंग एनर्जी का सागर सिर्फ वही है शिव बाबा, कोई इंसान नहीं। तो ये जो है हमें आत्मा परमात्मा ये फील होते रहना चाहिए हमेशा कि मेरा बाप कौन है और मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। मैं अगर संबंधों की बात करूं, बाबा मां के रूप में हमको क्या करता है, जैसे ही हमें दिव्य जन्म देता है ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा, हमको दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, उस लिफ्ट में बैठो, कौन कौन बैठेगा उसमें, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ। सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा, पवित्र बुद्धि पवित्र मन, पवित्र बुद्धि और पवित्र मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, राइट। पवित्र बुद्धि माना, पवित्र बुद्धि माना जो हमारी बुद्धि है, तीन चीजें ना, मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि क्या है, बुद्धि है जो आत्मा से सात एनर्जी निकल रही है ना, सात एनर्जी आत्मा से निकल रही है, वो जो है ना जिसके आसपास जो चीज है ना, जहां मैक्सिमम एनर्जी है उसको हम बुद्धि कहते हैं। बीच में दिल, उसके बाद विवेक, फिर जजमेंट पावर और फिर चित्त, ये है बुद्धि। अगर दिल में सातों एनर्जी भरपूर है तो विवेक हमारा ईश्वर जैसा हो जाता है, जजमेंट पावर निर्णय शक्ति हमारी दिव्य हो जाती है और चित्त हमारा शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है। और मन, मन माना मन में चार बातें, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। जब हमारा मन शांत, जब हमारा चित्त शांत होता है, एकाग्र होता है, आनंदमय होता है, तो हमारी स्मृति जो है जागृत हो जाती है संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप वाली, वृत्ति सबके प्रति रूहानी वृत्ति हो जाती है, भावना सबके प्रति शुभ हो जाती है, संकल्प पावन श्रेष्ठ शक्तिशाली और कल्याणकारी हो जाते हैं। किंतु मेरे दिल में कोई देहधारी आ गया, अपनी देह आ गई या कोई भी देहधारी आ गया तो क्या होगा, दिल में वो आ गया देहधारी तो क्या होगा, मेरा विवेक कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब विवेक ना प्रकृति शक्ति, क्या करूं, वो अंदर वाला कुछ और कहता है और सिचुएशन कुछ और कह रही है, विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चित्त चंचल हो गया, अशांत हो गया। अब कौन सी स्मृति जागृत हो गई, अब स्मृति जागृत हो गई देहभान वाली, विकारों वाली। फिर वृत्ति मेरी कैसी हो गई, वृत्ति हो गई देह वाली, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाली। और भावना हो गई अशुभ, और संकल्प कैसे हो, गंदे विकारी संकल्प आने लगते हैं। तो इस तरह से हमारी स्थिति होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, शुद्ध, जब मैंने कहा पवित्र बुद्धि पवित्र मन का मतलब क्या है, जिस दिल में शिव बाबा बैठा हो, या जिस दिल में कहे ये ज्ञान हो, या जिस दिल में मैं कहता हूं एबीसीडी हो, एबीसीडी माना ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। जिस दिल में सारा टाइम यही चलता रहे, एबीसीडी चलता रहे, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक है, इसमें मेरा जो भी है संबंधी, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे सास ससुर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौकर चाकर हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये क्यों मेरे साथ आए, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार ये लोग मेरे साथ हैं। मतलब ये कहें ड्रामा में, इस हिस्ट्री रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इसका क्रिएटर भी, ड्रामा का डायरेक्टर भी है, और इस ड्रामा का क्या है, सुप्रीम जस्टिस भी है, सबसे बड़ा जज भी है सुप्रीम। और इस ड्रामा में हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, किसी ने गाली दी अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी ने हमारी इंसल्ट की अच्छा हुआ बुरा हुआ, बोलो क्या हुआ, किसने धोखा दिया अच्छा हुआ बुरा हुआ, पक्की बात है ऐसा होता है या बुरा होता है, क्योंकि मैंने, उसने गाली दी इंसल्ट की तो मैंने इंसल्ट की हुई है। और कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, हिसाब किताब क्या है, हिसाब किताब यह है कि अगर पिछले जन्म में 100 साल पहले मैंने किसी से 10 रुपए उधार लिया था कितना उधार लिया था? 10 रुपया उधार लिया था। अब 100 साल बीत गए, 100 साल के बाद, मैं अभी पीछे हिसाब लगा रहा था, कल ही लगाया था मैंने हिसाब, 100 साल के बाद 10 रुपए का ब्याज मैंने उसको वापिस नहीं किया। इस जन्म में बन के आ गया, मेरा पति बन के आ गया, पत्नी बन के आ गया, बच्चा बन के आ गया, बेटी बन के आ गया, दोस्त बन के आ गया, बिजनेस पार्टनर बन के आ गया। अब वो कहता है मेरे 10 रुपए वापिस दो, साथ में ब्याज के साथ वापिस करो। 10 रुपए देना तो बहुत आसान बात है, ब्याज कितना हुआ? 4,08,00,000 रुपया। विनोद भाई हिसाब लगा के देखना, 10 रुपए का ब्याज 100 साल का 4,08,00,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो ब्याज दोगे इतना? अगर एक बार गाली दी होगी 100 साल पहले तो कितनी गाली हो गई? कितनी गाली हो गई सोचो जरा आप। तो गाली वो क्या देगा? सुबह शाम गाली देगा, पानी पी पी के गाली देगा आपको, है ना? और आप गाली खा खा के थक जाओगे, है ना? इंसल्ट एक बार की होगी, कितनी इंसल्ट होगी आपकी इस जन्म में। पर अभी अभी क्या भाग्य हमारा है कि बाबा हमारे साथ है, सागर हमारे साथ है, सहन करने का सागर हमारे साथ है, समाने का सागर हमारे साथ है। सारे कल्प में किसी जन्म में बाबा हमारे साथ नहीं हुआ। इसे जो जो देवे, गाली देवे, इंसल्ट करे, अपमान करे, धोखा देवे, कुछ भी करे, आप प्यार से स्वीकार करते जाओ, बोलो मत, बोला तो ब्याज दुगना हो जाएगा। सुना ना, बोलो ना महसूस करो। बाबा कहते थे, बाबा मुरली में कहते थे, जो गाली दे उसे गले लगाओ, जो आपको गाली दे उसको फूलों का हार चढ़ाओ। फूलों का हार तो नहीं चढ़ाना है ना, हार चढ़ाने के बाद उसको आप समझो मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया। आपके सिर पे 5 बोरी रखी हैं 10-10 किलो की, ये 10 बोरी रखी हैं, दबे जा रहे हो आप, उसने 5 बोरी उतार ली तो आप उसके थैंक्स करेंगे कि दुखी हो जाएंगे? 5 बोरी उतार ली मतलब उसने आपको 10 गाली देनी थी, 5 दे दी, 5 दे दी, अभी आप खुश होंगे दुखी हो जाएंगे? बोलो आज के बाद क्या करोगे, खुश होगे दुखी होगे? पक्की बात, दुखी नहीं होना है? तो उसको बोलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, है ना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपने दिया नहीं? तो फिर देखो हल्का पल्का पर आएगा, रिएक्शन कर दी, मूड ऑफ कर लिया, रोने शुरू कर दिया, यही बोलते रहे कि मेरे को ही करना पड़ रहा है, मैं ही दुखी हो रहा हूं, मेरे को ही दुखी होना पड़ रहा है, तो क्या हुआ? फिर और ब्याज बढ़ जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ अभी तक, कोई दोषी नहीं इस ड्रामा में, कोई भी दोषी नहीं है, एक भी आत्मा दोषी नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों बहुत अच्छा हो रहा है? क्योंकि अब बाबा मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, और हर समय मेरे साथ है। बाथरूम में हो, कहीं भी हो, आधी रात हो, कहीं पर भी हो, पहाड़ पे हो, कहीं पर भी हो, मैं अकेला हूं, कोई साथ में नहीं है, बीमार हॉस्पिटल बेड पे लेटा हूं, वहां कोई भी मेरे साथ नहीं है, दर्द हो रहा है बहुत जोर से, बाबा मेरे साथ है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और आज शाम को क्या होने वाला है, रात को क्या होने वाला है, अभी सबसे अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज सारा दिन मैंने बाबा की श्रीमत पे चला हूं। कल क्या होने वाला है, उससे भी अच्छा होने वाला है, परसों उससे भी अच्छा। कई लोग कहते हैं भविष्य में राजा ही मिलेगी, नहीं, भविष्य में राजा तो मिलेगी, तो अभी कल क्या होगा, कल उससे भी अच्छा होगा, परसों उससे भी अच्छा, तरसों उससे भी अच्छा। तो ऐसा अपने आप से चिंता, और भविष्य में क्या, सत्युग में क्या होगा उसकी तो बात ही मत पूछो, है ना, उसकी तो बात ही मत पूछो, है ना, क्या होने वाला है, सोने हीरे ज्वारात के महलों में रहेंगे, कंचन काया होगी, है ना, प्रॉब्लम ही कुछ नहीं होगी, 25 साल तो हम काम ही नहीं करना, कुछ भी खाएंगे पियेंगे डांस करेंगे, नहीं यही तो करेंगे। तो जितना यही जो है ना ABCD, सारा दिन इसी का क्या होना चाहिए, इसी का मनन चिंतन चलते रहना चाहिए। ये बाबा की मुरली है ना, इसी का मनन चिंतन चलते रहना, यही योग है, यही यथार्थ याद है, राइट, यही हमारी याद है। अब चलो एक बिल्डिंग बनाते हैं, चलो ना मैंने बिल्डिंग बनाते हैं, एक छोटा सा कमरा बनाते हैं, ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें हम रह करके, जैसे तो विघ्न परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती है ना, परीक्षाएं आती हैं और विघ्न आते हैं, तूफान आते हैं, तो अगर हम उस कमरे में बैठे होंगे तो हमें क्या होगा, हम हिलेंगे नहीं, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। देखो तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, नींव बनानी पड़ती है, नींव बनानी पड़ती है। तो नींव में क्या चीज चाहिए, अगर योग की बिल्डिंग स्ट्रांग बनानी है हमको तो उसकी हमें क्या चाहिए, पहले तो प्लॉट चाहिए है ना, प्लॉट चाहिए। चले प्लॉट की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी है ना, और ऊंचाई कितनी होगी, राइट। ऊंचाई कितनी, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, तो हमें पहली बात है जितना हम जितना लंबा समय हम दिन में 8 घंटा योग करें तो 8 घंटा बाबा की याद रहे, ये निरंतर मनन चिंतन के अभ्यास रहे। तो जितना हम 8 घंटा करें, 4 घंटा करते हैं, 6 घंटा करते हैं, 8 घंटा, 10 घंटे, सब बाबा ने कहा 8 घंटा करना है, तो 8 घंटा तो कम से कम होना चाहिए ना, चलते फिरते उठते बैठते याद बनी रहे। तो ये लंबाई होगी, जितना लंबा समय हम योग करते हैं उतनी हमारा कमरा हो गया, कितना बड़ा हो गया, 8 फुट का चाहिए, 2 फुट का चाहिए, 2 फुट वाला कमरा चाहिए क्या, कम से कम 8 फुट तो होना चाहिए, होना चाहिए। या अगर 2 फुट का कमरा बनाया तो क्या करोगे, लेट सकोगे, लेट तो सकोगे नहीं। तो 8 फुट में 8 घंटे, कम से कम 8 फुट कमरा लंबा चाहिए, ठीक है। चौड़ा कितना चाहिए, चौड़ा कितना चाहिए, 9 फुट, मतलब 9 फुट कम से कम चाहिए। ये 9 संबंधों की अनुभूति, बाबा से हर संबंध की अनुभूति करो, जितनी एक एक संबंध की अनुभूति बढ़ाते जाएंगे उतना कमरा चौड़ा होता जाएगा। अगर एक ही संबंध की अनुभूति करेंगे क्या 1 फुट का कमरा, 1 फुट के कमरे में रह पाओगे, शांति से रह सकते हो, नहीं रह सकते। 2 संबंध की अनुभूति 2 फुट हो गए, 3 संबंध की अनुभूति 3 फुट हो गया है ना, तो 9 संबंध कैसे, तो 9 संबंध तो मुख्य है, 9 संबंध तो कम से कम अनुभूति बहुत अच्छी, एक एक संबंध की गहरी अनुभूति होनी चाहिए। कभी मैं फिर क्लास में बैठूंगा, एक एक संबंध की अनुभूति बताऊंगा, एक एक संबंध से कैसे अनुभव करना चाहिए बाबा को है ना, एक एक संबंध की अनुभूति चलते फिरते कैसे करनी चाहिए, हर काम करते कैसे करनी चाहिए। संबंध तो सारे हैं कि तो 9 संबंध तो बहुत गहरे अनुभव होने चाहिए, ठीक है। उतनी चौड़ाई हो गई, तो कितने घंटे याद करते हैं वो हो गया लंबाई, कितनी कितने संबंध से याद करते हैं वो हो गई चौड़ाई, और फिर हमारी याद कहां तक जाती है, सूक्ष्म मतन तक जाती है के परम धाम तक जाती है। तो सूक्ष्म मतन मतलब ये सकार में तो हम रहते ही है, सूक्ष्म मतन में कितना समय रहते हैं और परम धाम में, ये होगी ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। तो चाहिए ना पूरी मूल वतन तक जाना, तब ठीक ठीक ढंग की ऊंचाई बनती है, 10-12 फुट वाली, खाली यहीं पर रह गए तो कितनी 4 फुट की ऊंचाई बनेगी, 4 फुट में कैसे उठ तो सकोगे नहीं, खड़े तो हो नहीं सकेंगे नहीं। तो अगर फिर 6 फुट की ऊंचाई चाहिए, 8-10 फुट की ऊंचाई चाहिए, तो मूल वतन तक जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कंफर्टेबल हो सके। फिर इसकी फाउंडेशन चाहिए, फाउंडेशन क्या है इसकी, मर्यादाएं, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं, पवित्रता, पहला जो इसका पहली जो फाउंडेशन है पवित्रता है, एक पिलर बनाते ना बीच में पिलर, पवित्रता है ना। दूसरा सत्संग, शुद्ध सात्विक भोजन, हमारा अन्न पे परहेज बहुत अच्छा होना चाहिए। पहला पवित्रता, पहला स्ट्रांग पिलर है पवित्रता, सामने वाली दीवार फाउंडेशन की पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं है तो हमारा जीव, हमारा योग रूपी बिल्डिंग ठहरी नहीं सकती है, जैसे रेत वाली बिल्डिंग हो गई, रेत पे ऐसे बिना बिना फाउंडेशन वाली बिल्डिंग हो गई, क्योंकि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, थोड़ी पवित्रता कम हुई, बुद्धि इसमें गई उसमें गई, तो मतलब तब ब्राह्मण नहीं हूं मैं, उस समय मनुष्य हूं, मन के वश में हूं, ठीक है। पहली बात पवित्रता, दूसरी बात अन्न, ये बाजार का बना हुआ चीज है, ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज है, ये मशीन की बनी चीज है, थोड़ा सा खा लेता हूँ, थोड़ी सी खा लेता हूँ, मशीन की बनी ना, ये तो मशीन की कॉफी है ना, थोड़ा पी लेता हूँ, थोड़ा शुद्ध शुद्ध माना बाबा की याद में बनी हुई चीज और बाबा की याद में खाना, सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाली चीज, अंकुरित है, दलिया है, सब्जी, रोटी, सलाद, फल, दूध, ये सात्विक चीजों में आता है। पराठा, पकोड़ा, समोसा, ये आते हैं रासिक फूड में, रासिक माना आलस बढ़ाने वाले, पराठा, पकोड़ा, समोसा, ये क्या करते हैं, आलस बढ़ाते हैं। आप सोचो मैं पराठे पकोड़े खाऊं, समोसे खाऊं और फिर योग लगाऊं, नहीं लगेगा, नींद आएगी, ठीक है। और फिर क्या है, लहसुन प्याज अचार खाना, मिर्चे खाना, लाल मिर्चे खाना, ये है तामसिक भोजन, चाय कॉफी पीना है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये पीते ना कैंपा कोला, कौन सी कोला होती, कोको कोला, पेप्सी पीते हैं ना, तो ये पीना माना क्या करना, तामसिक भोजन, मतलब ये तामसिक, इससे उत्तेजना पैदा होती है, बात बात पे गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, उदासी आएगी, मूड ऑफ हो जाएगा, बात बात पे सेंसिटिव बन जाओगे, नाजुक स्वभाव बन जाएगा, तो लगेगा ही नहीं। फाउंडेशन, ये हमारी फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन समझते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नींव, नींव। अगर हमारी पवित्रता ठीक नहीं है, हमारी अन्न का प्रेस ठीक नहीं है, तो योग की बिल्डिंग कभी ठहरेगी नहीं, फिर कहीं योग लगता नहीं, योग लगता नहीं। योग कब लगेगा? योग कोई किसको सिखा नहीं सकता है, योग करना होता है। खाना है ज्ञान और चबा के पचाना है योग। ज्ञान को हमने खाया, खाया मना मनन चिंतन मंथन सिमरण किया, पचाया, वो है योग। अब खाना तो दे दिया, अब चबाएगा कौन, पचाएगा कौन? कोई आपको सिखाना पड़ेगा क्या उसको? कोई सिखा सकता है किसी को कि ऐसे चबाना होता है, ऐसे 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 पचाना होता है? वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, मुंह में डालो, ढंग से चबाओ, खूब चबाओ, खूब चबाओ, इतना चबाओ कि निगलना ना पड़े। अगर साबुत निगल लिया तो क्या होगा, पेट में जाके बदहजमी, पेट दर्द हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ज्यादातर लोगों को ऐसा ही होता है, ज्ञान को साबुत ही निगल लेते हैं, है ना, उससे पेट में दर्द हो जाता है, पचता ही नहीं अंदर, और ही गैस बन जाती है। तो बाबा ने क्या कहा और हमने धारण तो किया ही नहीं, तो बस भटकते रहते हैं। बाबा ये कहता है मेरे से तो होता ही नहीं, बाबा ये कहता है मुझसे तो होता ही नहीं, हाथ पर में ताकत ही नहीं आ रही, ताकत ही नहीं आ रही, मेरी बुद्धि में ताकत ही नहीं आ रही, मेरी बुद्धि में तो भटकती रहती है। तो खाने को खूब चबाओ, खाना माना ये ज्ञान रत्नों को खूब चबाओ, खूब माना खूब मनन करो, चिंतन करो, गहराई में जाओ, मनन रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना जूस निकालो, है ना, घोटो उसको, घोटो, और फिर जो मक्खन निकले उसको फिर खाओ, मतलब कार्य में लगाओ, कार्य करते समय याद रखो। तो ये है हमारा पवित्रता, और दूसरा क्या, शुद्ध सात्विक भोजन, फिर तीसरा सत्संग। इधर की दीवार ये होगी, ये वाली सत्संग, इधर की दीवार सत्संग माना सत्य का संग, माना एक बाबा और मुरली, दो ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। और मैगजीन ये देखा, इस धर्म का, उस धर्म का, इसने बताया, रामदेव ने बताया, उसने ये बताया, इसने बताया, थोड़ा ये भी कर लू, थोड़ा ये भी कर लू, वो सब झूठ है, ठीक है। और फिर चौथी बात है दैवी गुणों की धारणा, ये चौथी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मजबूत हो गई, जमीन प्लॉट ले लिया आपने, अब क्या करना है, चार पिलर बनाने, चार पिलर, पहला पिलर अमृत वेला, पिलर बनेंगे चार पिलर पे, फिर दीवार छत बनाएंगे ना, तो फिर होगी अमृत वेला। पहला पिलर सामने वाली दीवार, अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पिलर मुरली, क्लास में बैठ के मुरली सुनना, मोबाइल पे नहीं, इंटरनेट पे नहीं, टीवी पे नहीं, क्लास में बैठ के मुरली सुन, एक घंटा बाबा की याद में, 40-45 मिनट की मुरली होती है, बाबा की याद में, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो। और तीसरी जो बात है वो है, तीसरी जो है क्या बात है, सारा दिन अटेंशन, अटेंशन माना वही बाबा ने जो सुनाया उस पर मनन चिंतन मंथन सिमरण करो सारा दिन। ये पीछे की दीवार का पिलर हो गया, पीछे वाली दीवार होते हैं दो, तो आगे के पिलर हो गए दो, पीछे वाली दीवार मनन अटेंशन, और चौथा वेंटिलेशन। सोने के पहले चार बातें करनी होती, सोने के पहले लेटर लिखो, सच्चाई से लेटर लिखो बाबा को, सारी बातें सुबह से जो जो गलती हुई अपना पूरा पोता मेल दो, बाबा मैंने ऐसे किया, उसका तरीका क्या है, पहले दिल में बाबा को बैठाओ, शिव बाबा को बैठाओ, फिर सामने ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, फिर ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो, बाबा ये था ना मैंने सुबह सुबह ऐसे किया, वो सामने उस व्यक्ति मेरे सामने आया, उसने मेरे को ऐसा बोला, मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा बाबा, ब्रह्मा बाबा कैसे करता, ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो, मैंने ऐसे किया, ब्रह्मा बाबा ऐसे करता, तो गलत हुआ ना, लिखो बाबा मुझसे ही गलती हो गई। फिर दूसरी बात, बाबा ऐसे ऐसे किया मैंने, आप तो ऐसे करते थे, आपकी डायरेक्शन थी, मैंने ऐसे कर दिया, तो ऐसे लेटर लिखो, ठीक है। तो पहले लेटर लिखो, सच्चा लेटर, जो भी गलतियां हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की फैमिली में जाना है, नारायण की फैमिली में जाना ना, लक्ष्मी नारायण की, तो उसकी फैमिली में जाना, तो क्या उसके जैसा बनना पड़ेगा, तो कंपैरिजन उससे करना है, किसी और से नहीं करना है, तो उससे कंपैरिजन लेटर लिखो, लेटर लिखेंगे सच्चाई से तो उसमें जाएगा, तो लेटर लिख दिया। उसके बाद जो है लेटर लिख के फिर चार्ट भरो याद का, कितने मिनट याद हुई टोटल, हर घंटे का याद का चार्ट, एक घंटे में चार से पांच कितने मिनट याद की, पांच से छह, छह से सात, सात से आठ, एक एक घंटे का याद का चार्ट। फिर उसके बाद पूरी मुरली पढ़ो, उस दिन की मुरली रिवाइज करो, रिवाइज करने से क्या होता है, मन प्लेन हो जाता है। तो तीसरा, सोते समय 3 मिनट याद कर लो। ये आधा घंटा लगता है टोटल प्रोसेस में, लेटर लिखना, चार्ट भरना, मुरली पढ़ना और 3 मिनट याद, फिर सो जाओ, 9:30-10 तक सो जाओ। तो ये 4 हमारे पिलर्स हो गए, ठीक है। अब ईटे लगानी पड़ेंगी, पिलर तो बन गए, पिलर बन गए ना, अमृत वेला, मुरली और कौन सा, अटेंशन और वेंटिलेशन, 4 पिलर बन गए, 4 नियम, मतलब जो ब्राह्मण जीवन के 4 नियम के पिलर बन गए। अब पिलर के अंदर ईटे लगानी, ईटे कौन सी लगेंगी, जितना ड्रामा को बिंदु लगाते जाओगे उतनी ईटे बनती जाएंगी, ठीक है। हम ईटे क्यों नहीं बनती है, खाली पिलर पे बिल्डिंग बनती है क्या, बनती है क्या, जितनी ड्रामा में अपने को आत्मा समय के बाबा की याद में एक संबंध की अनुभूति करते हुए, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है आपके घर में, बाहर, सेंटर में, कहीं पर भी, यज्ञ में कुछ भी हो रहा है आपके साथ, उसमें बिंदु लगाते जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला, तो ये बार बार बिंदु लगाते जाओ, ईटे बनती जाएंगी। ईटे बनेंगी ना, ईटे तो बनानी पड़ेंगी, ईटे मुझे बनानी है अपनी बिल्डिंग की, योग की बिल्डिंग की, नहीं तो चारों में तो बहुत हवा आएगी ना, इधर से भी हवा आएगी, इधर से भी हवा, इधर से गंदगी आएगी, है ना, तो वो हमें ये बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बिल्डिंग बन गई, ईटे बनती जाएंगी, तो ईटे बनाने टाइम लगेगा ना, बिल्डिंग तभी तो बनेगी। तो ये दीवारें खड़ी हो गई, अच्छा दरवाजे लगाने पड़ेंगे, दरवाजे कौन से लगाने पड़ेंगे, सत्यता का दरवाजा लगाना पड़ेगा और ईमानदारी खिड़की लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब हमारे बाबा के 2 क्वालिटी चाहिए बच्चों के, सत्यता, सत्यता माना अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना, सत्य स्वरूप में देखना, और खिड़कियां ईमानदारी की, जो जैसा हो जाए सच्चाई से बाबा को बता देना, बाबा से हर चीज पूछ के करना, हर कदम पे, हर कर्म के पहले राय करना बाबा से, ये है ईमानदारी, ठीक है। ये खिड़कियां लगा लो, इधर आगे भी 2 खिड़की लगा लो, एक दरवाजा साइड में भी 2 खिड़की लगा लो, उधर भी 2 खिड़की, ताकि खूब हवा वेंटिलेशन होता रहे, ठीक है। खिड़कियां लग गई, अब छत चाहिए, छत किसकी लगेगी, छत कौन सी लगेगी, छत लगेगी धारणा की छत, है ना, कौन सी छत लगेगी, धारणा की छत, है ना। धारणा क्या, शक्तियों की लगेगी, शक्तियां, शक्तियों की धारणा, वो लगे स्टील के पोते ना, सरिया कहते हैं ना, सरिया लेंटर बनाएंगे ना, तो सरिया लगेगा कौन सा वाला, शक्तियों का और गुणों का सीमेंट, है ना, दैवी गुणों का सीमेंट, है ना, और कौन सा चाहिए, रेत भी चाहिए ना, सर वो नहीं, रोड़ी होती है, रोड़ी बजरपुर चाहिए ना, वो कौन सा वाला चाहिए, ज्ञान के पॉइंट्स का, है ना, ज्ञान के पॉइंट्स का रोड़ी सीमेंट चाहिए, रोड़ी और बजरपुर चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए बहुत अंदर ज्ञान के रतन, और ये मैं भी अभी बैठे बैठे बना रहा था ना, यहाँ बैठ योग में बनाया मैंने ना, ये मेरे को अभी भी ध्यान आया सर ना, तो मेरे को सुबह से थोड़ा सोच रहा था इसके ऊपर, तो मैंने कहा बिल्डिंग तो बनानी चाहिए ना, तो फिर उसकी इसकी बनेगी धारणा की छत, थोड़ी शक्ति नहीं होगी ना तो छत गिर जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ भी अगर सीमेंट कम डालोगे, गुणों का सीमेंट कम होगा तो भी छत गिर जाएगी, है ना, तो ये ऐसा होगा। फिर फर्श बनाना है, फर्श क्या होगा, वो ज्ञान के बिंदुओं का फर्श, ज्ञान के रत्नों का, है ना, उसमें भी सीमेंट डलेगा, उसमें भी सीमेंट डलेगा, उसमें वज्रपुर डलेगा, किंतु उसमें बीच में लगाते ना डायमंड लगाते हैं, कुछ पत्थर लगाते थे पहले, चमक मार्बल का फर्श बनाते थे ना, बीच में पत्थर लगाते थे छोटे 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 मार्बल के, तो वो फर्श बना दो, ठीक है। इस तरह से उसका फर्श बना दो, ज्ञान का फर्श, धारणा की छत और दीवारें किसकी, 4 पिलर, और 4 पिलर के बीच में ईटे, ईटे कौन सी, याद रूपी बिंदगी, बिंदगी ईटे लगाओ, तो छत बन गई, धारणा बन गई। अब इस बिल्डिंग के अंदर बैठ के योग करो, तो पावरफुल योग होगा, और इस धारणा की छत, धारणा रूपी छत पे बैठ के सेवा करो सारे विश्व की, तो सारे विश्व की सेवा हो जाएगी, ठीक है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये हमारी बिल्डिंग बन गई ना। इस बिल्डिंग में रहो, इस बिल्डिंग के अंदर रखो, जब दरवाजा बंद करना दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद करना खिड़की बंद कर, हवा आए तो बंद कर दो, सेफ रहोगे, ना परिस्थितियां तंग करेंगी, ना परीक्षा तंग करेंगी, ना विघ्न तंग करेंगे, ठीक है। और अपनी योग की शक्ति बढ़ती जाएगी, इस तरह से हम अपनी स्थिति को बनाते जाएंगे। फिर कभी मैं बात करूंगा तो फिर संबंधों पे बात करूंगा, ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट याद करो।